और 2 दिन लगा के बनाया। ये अल्लाह की कुदरत का इजहार भी मकसूद है कि तुम अल्लाह के साथ कैसे किसी को शरीक कर सकते हो जिसने तुम्हारे रहने के लिए इतना खूबसूरत इंतजाम किया। और इसमें यह नहीं है कि अल्लाह ताला ने 2 दिन जो लगाए, तो आपके शायद जेहन में आ रहा हो कि अल्लाह ताला तो कुन कह के पैदा कर सकते हैं, 2 दिन क्यों लगाए अल्लाह ताला ने। बात यह है कि जो चीज स्टेप बाय स्टेप की जाए, जो चीज ग्रेजुअली की जाए, अल्लाह ताला चाहे तो कुन कह के भी कर सकते, लेकिन जो चीज ग्रेजुअली की जाए उससे पता चलता है कि उसके पीछे बड़ी प्लानिंग है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, बड़े इसमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुंचने के लिए जो जब मरहलों से वो गुजरती है वो चीज, उसके अंदर बड़ी मसलहत होती है। मसलन मिसाल के तौर पे आपको एक बात से वाजे करती हूँ, एक बच्चा पैदा होता है, आज पैदा हुआ कल को वो बड़ा आदमी बन गया, बताएं आप जरा, अल्लाह चाहे तो ऐसे हो सकता है, एक दिन पैदा हो अगले दिन बड़ा लड़का बन जाए, तीसरे दिन जवान हो जाए, 3 दिन के अंदर पूरा आदमी बन जाए, लेकिन उसके अंदर उसके लिए खैर नहीं है। वो जो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के पला बढ़ा उसी के अंदर उस मखलूक की खैर है, अल्लाह की मसलहत है उसमें, उसकी हिकमतें हैं। तो 2 दिन में जो उसने एक स्टेज से दूसरे पे मसलन, जैसे अब साइंस हमें बताती है ना कि जमीन कूल डाउन हुई फिर ये हुआ, तो उसके अंदर मसलहतें हैं। ये 2 दिन का भी जो टाइम है ये नहीं है कि हम ये कहें जो हमारी जमीन के 2 दिन, वल्लाहु आलम के कौन से जो अल्लाह ताला के पास दिन है वो मुराद है यहाँ पे। और हम तो कुरान में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एक दिन, हमारे जो अल्लाह ताला के पास जो एक दिन है वो हमारे 50,000 साल के बराबर है। इसका मतलब है उसका हर काम कितना वेल प्लान्ड है, और ये भी पता चलता है उसने इंसान के लिए कितना एहतमाम किया कि 2 दिन में इस जमीन को पैदा किया, वतजा आलूना लहू अंदादन, और तुम्हें ना ये शर्म आई कि तुम उसी के साथ शरीक ठहराते हो। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ये है रब तमाम जहानों का, ये है तुम्हारा रब जिसने जमीन को पैदा किया तुम्हारे लिए। और ये एक हदीस में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दिनों के बताया कि इस दिन में अल्लाह ताला ने इस चीज को पैदा किया, इस दिन में इस चीज को पैदा किया, और उसने जुमेरात के दिन आसमान को पैदा किया, जुमे के दिन सितारों को, चांद सूरज फरिश्तों को पैदा किया, 3 सातों में, और इस तरह। तो क्योंकि यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने पूछा था कि आसमान और जमीन के पैदा करने के मुतालिक सवाल किया था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा बता दिया और ये बताया कि आखिरी सात में अल्लाह ताला ने वो इबलीस को जन्नत से जब उसको निकाला था, वहां से हुक्म दिया था सज्दे का, तो उसको निकाल दिया वहां से, तो यहूद ने पूछा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी हो गया। उन्होंने कहा अगर आप पूरी बात बता देते तो आपकी बात सही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हुए और फरमाया लकद खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुगूब, कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में आसमान और जमीन को पैदा किया और उसको कोई थकावट नहीं हुई। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने 6ठे दिन रेस्ट किया, फिर 6 दिन पैदा करके 7वें दिन यानी आराम किया। तो अल्लाह ताला ने ये आयात उतारी कि अल्लाह ताला को इनको बना के वो कोई थका नहीं है, और जब उसने इनको बनाया तो उसमें उस वक्त उसका कोई शरीक नहीं था। वह जहाला फीहा रवासिया मिन फौकहा, और इसी के ऊपर से उसने पहाड़ बनाए, यानी पहाड़ मिन फौकहा का मतलब क्या, हा किसकी तरफ जा रही है, जमीर जमीन की, ठीक है, इसमें पहाड़ बनाए इसी के ऊपर से, पहाड़ इसमें गाड़ दिए, यानी इसका मतलब है पहाड़ इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी पहाड़ है जमीन के नीचे और ऊपर भी जा रहे हैं। और आज तो साइंस बता रही है ना, उस वक्त तो नहीं लोगों को पता था, जितना आज इन आयात को हम समझ सकते हैं ना, उस जमाने के लोग शायद ना इतना समझ सकते। तो पता चला कि ये सब कुछ खुद नहीं पैदा हो गया, खुद ये मौजूद नहीं है, ये अल्लाह ताला ने पैदा किया और उस वक्त उसका कोई शरीक नहीं। जब वो पैदा कर रहा था तो कोई साथ क्यों मिला नहीं था कि जिसने साथ मिलके पार्टनरशिप की हो, या किसी ने प्लानिंग में कोई हिस्सा लिया हो, या किसी ने कोई मशवरा दिया हो, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखो और उसको पहचानो। वा बारक फीहा, और बरकत डाल दी इसमें, किसमें, इस जमीन में, जमीन में जितनी चीजें उनमें भी बरकत डाल दी। वकद्दर फीहा, और मुकद्दर कर दी, अंदाजे से रख दी इसमें। क्या अकवातहा, उसकी खुराक, उसकी पैदावार, हर इलाके की मखसूस पैदावार उसने मुकर्रर कर दी। कितने दिनों में, फी अरबाती अय्याम, 4 दिनों में। ये सारा सिस्टम, ये सारी कैलकुलेशन और सारा रखना 4 दिनों में हुआ। अब ये इससे हमें पता चलता है ना, हम भी सिस्टमेटिकली काम करें, स्टेज बाय स्टेज। हम कितने जल्दबाज हो जाते हैं ना, आज ही हो जाए बस, हर काम आज ही हो जाए। तदरीज जो है ना, ये अल्लाह का कानून है। अब देखिए, एक बच्चा है, उसको पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, हालांकि अल्लाह चाहे तो कुन से पैदा कर सकता है, मगर उसका हर, उसने एक दुनिया का एक निजाम बनाया ना, उसमें हर चीज में तदरीज है, तदरीज का कानून है, ग्रेजुअली होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो इंसानों की भलाई इसी में है कि ग्रेजुअली चीजें बढ़ें, ग्रेजुअली काम हो। सवाल लिसाइलीन, इसमें बराबर है सवाल करने वालों के लिए, यानी जरूरतमंदों के लिए पूरा जवाब है इसके अंदर, उनके लिए एहतमाम है। साइलीन की जरूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये सब रखा है, नहीं बराबर है का मतलब है उनकी जरूरत पूरी की, अल्लाह सबके लिए पूरा पूरा है। अच्छा, अब ये इसमें इतनी डेप्थ है इस आयत में, यानी आप इसके अंदर जितना गौर करते जाएं उतना ही आप कहेंगे, हैरान होंगे कि यानी अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कि इस ये जमीन जब अल्लाह ताला ने बनाई तो जमीन हिलती थी, स्टेबल नहीं थी, उसके ऊपर आप रह नहीं सकते थे। तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों को ऐसे इसमें गाड़ दिया जैसे मेखे होती हैं, कील होते हैं ना किसी चीज को स्टेबल करने के लिए, इस तरह अल्लाह ताला ने कीलों को गाड़ दिया, और ये अब जमीन को स्टेबल किया इसके बाद, ताकि इंसान उस पर रह सके, और इसके अंदर बरकतें भी रखती, फूड की आपकी तमाम जरूरतें, जो हवा, पानी, खाना पीना, सब तरह की जरूरतें रखती, बरकत रखी। एक बीज आप डालते हैं, उससे कितने फल निकल आते हैं, है ना, एक दरख्त निकलता है, उससे हर साल उस मौसम में फल निकल। एक आम की गुठली डालते हैं जमीन में, कितने फल उससे निकालते हैं, बेशुमार। तो बरकत है ना, ये बरकतें इतनी रखी हैं कि यानी थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सी खाद डाली आपने, कितनी बरकतें समेटते हैं। और बरकत का माना क्या होता है, खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर, खत्म ना होने वाली चीज, यानी इंसान की जरूरत की जो चीजें हैं ना, उनको अल्लाह ने बरकत के साथ इस जमीन में रखा हुआ है। आप नहीं कभी सुनेंगे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बस पानी खत्म हो गया दुनिया से, कितने लाखों सालों से इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एक ये थोड़ी सी आयतें हैं, इनके अंदर आप देखें सारी जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, सबकी बात हो रही है, और समझाया किसको जा रहा है, बताया किसको जा रहा है, अहले मक्का को। ये नहीं कहा गया बस ना अहले मक्का को नमाज रोजे का बताओ और ये शिर्क से मुआनत का, ये चीजें उनको क्या जरूरत है पढ़ाने की बताने की, उनको कहां समझ आएगी। इससे क्या पता चला है कि दीन की तबलीग जो है ना, उसकी हिकमत कि दुनिया के उलूम को भी साथ लेके चलो। तो बात यही है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया था, सबसे पहले चीजों के नाम, अशिया के नाम, राइट, दुनिया का इल्म था ना, ये चीजें क्या है, सब चीजों के नाम बता दिए, सूरह बकरा में पढ़ा है ना, तो ये इल्म था ना दुनिया का। लेकिन जब उसमें दीन का इल्म नहीं था ना, तो शैतान ने उनको बहका दिया, शैतान के चुंगल में फंस गए, उनको अशिया का ही इल्म था सिर्फ। और फिर जब अल्लाह ने उनको फिर हिदायत भी दे दी, दीन का इल्म भी दे दिया, तो फिर देखें फिर सीधे रहे। तो दीन का इल्म और दुनिया का इल्म, दुनिया में इंसान रहता है तो दुनिया के लूम की तो जरूरत पड़ेगी ना, ये भी साथ साथ चलेंगे ना। बेहतरीन तौर पे तबलीग आप तभी कर सकते हैं जब इन दोनों लूम को साथ लेकर चलते हैं। जिसने दीन का इल्म दिया, उसी ने ये दुनिया भी बनाई है, उसी ने ये दुनिया की चीजें बनाई हैं जिनका इल्म हम ले रहे हैं। असल में हम जब ये इनको अलग अलग खानों में बांट देते ना, हम साइंस भी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, फॉर्मूले रट लो, इक्वेशन सॉल्व कर लो और ये कर लो, बस ये। उसके पीछे जब दीन का इल्म नहीं होता ना, तो फिर इंसान इसी तरह पढ़ता है, इसीलिए साइंस से फिर रब तक नहीं पहुंच पाते। वरना तो आप देखें, दुनिया का इल्म ले लें, कोई भी दुनिया का इल्म ले, कोई साइंस ले लें, जियोलॉजी ले लें आप, हिस्ट्री ले लें आप, कोई भी दुनिया का इल्म ले, इन द एंड वो आपको रब तक ही पहुंचाता है। अगर आप उस फ्रेम से देखें, अगर आप कुरान की ऐनक लगा के उसको पढ़ें, हम क्या करते हैं, या तो दुनिया का इल्म लो या दीन का लो, यानी उन दो बिल्कुल दोनों ऑपोजिट कर देते हैं। हालांकि मैं ये समझती हूँ दोनों में एक दूसरे की जरूरत पूरी होती है। दुनिया का इल्म ले वो भी रब तक पहुंचाएगा, बशर्ते कि आप दीन के इल्म के साथ उसको हासिल करें। आप ये देखें, ये आप साइंस ही तो पढ़ रहे हैं, आगे भी आप पढ़ रहे हैं कि आसमान जो था वो धुआं था, तो ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी नहीं है क्या इसमें? आप कौमों के हालात पढ़ते हैं, हिस्ट्री नहीं है क्या उसमें? लेकिन हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, क्या कभी हमने इस एंगल से समझाया? हम कहते हैं साइंस तो दुनिया का इल्म है। हालांकि देखें तो सही, वो पढ़ के भी आप रब को पहचान सकते हैं, अगर शऊर के साथ पढ़ें, अगर कुरान का इल्म हो पीछे। वो साइंस में भी क्या है, रब की जो निशानियां हैं दुनिया में बिखरी हुई हैं, उन्हीं का इल्म है ना। तो अल्लाह ताला ने तो खुद ही फरमाया कुरान में, गौर करो इन निशानियों में। लेकिन जब कुरान का इल्म साथ नहीं होता, दीन का इल्म साथ नहीं होता, तो हम कभी उस तरह से गौर ही नहीं करते। तो दोनों उलूम जब तक साथ साथ नहीं चलेंगे, बात नहीं बनेंगे। इसी नियत से जब आप दुनिया का इल्म भी लेते हैं ना, कि मेरा दीन भी ये कहता है, कुरान भी ये कहता है, गौर करो इसमें, अल्लाह को पहचानो, जब आप इस नियत से इस इल्म को भी लेते हैं, वो भी इबादत बन जाता है। हैंड इन हैंड लेके चलना है। कुरान कहेगा गौर व फिक्र करो कायनात में, तो इंसान एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट भी पढ़ता है, सितारों को, सितारों को, सूरज चांद को भी स्टडी करता है, रब को पाता है। कुरान कहेगा देखो क्या कुछ रब ने उगाया जमीन में, इंसान बॉटनी भी पढ़ेगा तो उसमें भी रब को ही पाएगा। फिर कुरान से वो देखेगा तो अल्लाह ताला फरमाता तुम्हारे खाने को चौपाए बनाए, पढ़ा नहीं था हमने लास्ट टाइम, चौपाए बनाए, और देखो दूध कैसे निकलता है गोबर और खून के दरमियान से। तो उस वक्त आप क्या पढ़ रहे होते, साइंस नहीं पढ़ रहे होते आप। कुरान में देखें पहाड़ों की बात आई, अल्लाह ताला ने कैसे इनको गाड़ा हुआ। जब आप जियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप उसके अंदर देखते नहीं है कि जमीन की तहों को जो आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, पहाड़ों को पढ़ते हैं, कुरान की आयात याद नहीं आती। फिर आसारे कदीमा को देखते हैं तो आपको पहचान नहीं आती कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इन गाफिल कौमों का अंजाम देखो, उससे ध्यान नहीं आएगा रब की तरफ। तो जब हम ये पढ़ेंगे, तो जब इंसान इसके बाद ये पढ़ के जूलॉजी पढ़े, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसको रब ही याद आएगा। फिर कुरान कहता है अपने नफ्सों में गौर करो, तुम्हारे अपने नफ्सों में निशानी है। तब इंसान एक सेल को भी स्टडी करता है ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो रब को पहचानता है। जो मैं कहती हूँ, जो डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल की किताबों के हर सफे में आप अपने रब की अजमत को पाते हैं, उसकी कुदरतों का एहसास होता है। नुतफे को पढ़े, मुदगा को पढ़े, अलका को पढ़े, आप अल्लाह की आयात में ही गौर व फिक्र कर रहे हैं, वो अल्लाह की निशानियां हैं। वो कैलकुलेशन करेगा, मैथ पढ़ेगा, वो भी इल्म रब ने दिया। जिन्होंने मैथ पढ़ा उनको पता है कि मैथमेटिक्स में कैसे अमेजिंग नंबर थ्योरीज हैं, 2+3, 3+2, क्या ये कैसी थ्योरीज है ये, वो भी रब को पाएगा। तो कुरान जिन चीजों का जिक्र करता है, उनको प्रैक्टिकली आप दुनिया के अलूम के जरिए प्रूव होता देखते हैं। हाँ ये है कि जब आप सिर्फ दुनिया का इल्म लेते हैं ना, दीन के इल्म को पीछे कर देते, तो फिर आप वही बनते हैं, कोई अरस्तू बन गया। तो जैसे मैंने उनकी बात बताई थी कि उन्होंने कहा कि हमें इसकी क्या जरूरत है, कोई अफलातून बन गया, कोई आइंस्टाइन बन गया, कि दुनिया के अलूम में तो माहिर हो गए, आपको पहचानना ही नहीं। कोई फिरौन बन गया, वो तो कब्बिर हो गए वो पाके। तो इनको अलग नहीं करना, कंफ्यूज हम तब होते हैं जब अलग करते हैं, अलग नहीं करना, ये साथ चलेंगे। आप जितनी ये बातें पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएंगे, ये सारी आयात आप बाहर देख सकते हैं दुनिया के अलूम के अंदर, मगर जब आपने कुरान पढ़ा होगा तभी आपको ये नजर मिलेगी। कोई सब्जेक्ट आप ले लें, हर चीज में आपको रब मिलेगा, उसकी बात मिलेगी। लेकिन जब निगाहें अंधी हो जाएं तो फिर तो कहीं पे भी नहीं रब नजर आएगा, फिर तो जाहिर सी बात है। उसके लिए नजर चाहिए ना, अंधे ना हो। जब आपके पास आंखें होंगी ना, फिर कोई सब्जेक्ट भी, सूखा पत्ता भी ले लेंगे ना, उसमें भी रब ही नजर आएगा, उसकी निशानी। तो बात वही है कि आप किस नजर से पढ़ रहे हैं, किस नजर से देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, हमें नमाज सिखाई जा रही, ना रोजा, कुछ भी नहीं, रब की निशानियां ही है सारी। अफसोस ये है कि आज हमारे यहाँ जो सारे ये उलूम है ना, चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का, इतने जॉब ओरिएंटेड हो गए कि जो दीन पढ़ता है वो भी इसीलिए पढ़ता है, इल्ला माशाल्लाह, सिवाय लोगों के, ऐसे भी लोग हैं जो सही तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे गरीब जो तबका है वो कहते हैं कि चलो कल को किसी मस्जिद का इमाम बन जाएगा, चार बच्चों को कुरान पढ़ा देगा, चार पैसे कमाने के काबिल हो जाएगा, कोई डिग्री इसको मिल जाएगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो हम पढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए हम इसी में कर देते हैं। तो वो भी डिग्री की खातिर, सर्टिफिकेट की खातिर, चार पैसे कमाने की खातिर वो ले लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा फिर ये सामने चीजें आती हैं कि बच्चों को मार मार के पढ़ाना, उनको रटाना, उनको ऐसे करना, जो रोज आप खबरों में सुनते भी हैं। तो जैसे उन्होंने खुद पढ़ा वैसे ही आगे बताते हैं, ना खुद रब की पहचान आई, ना दूसरों को करा पाते हैं। और बाकी जो जिनके पास चार पैसे होते हैं वो सोचते हैं हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाएं, हम दुनिया का ही इल्म पाएं, आखिर दुनिया का इल्म ही सब कुछ देता है। उनके नज़दीक यही दो कामयाब लोगों की निशानी यही है कि उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, तो वो दो और दो चार बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ना वो रब को पा सकते। कोई भी इल्म आप लें, लेकिन जब उसको पीछे कुरान की बैकग्राउंड होगी ना, पीछे कुरान की फोर्स होगी ना, तो वो इल्म आपको अल्लाह से करीब ही करेगा और अल्लाह की पहचान और देगा। अब आज आप कुरान पढ़ के खुद सोचें, आज अगर आप वही साइंस की किताब बच्चों की उठा लें, कोई कोई इंग्लिश की, मैथ की, कुछ भी उठा लें, अब आपको नजर आती है ना रब की निशानी। लेकिन जब आपने पढ़ा था उस वक्त नहीं नजर आती, ना हमारे उस्तादों को जो हमारे स्कूलों में पढ़ाते ना उनको इतना समझ है। सारे अलूम पढ़ डालते हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र कहीं भी नहीं होता। और हमारे रब को देखो कि उसने अपने कलाम में भी सारे जहान का जिक्र कर दिया। तो अगर आप गौर करें तो इसमें सारे अलूम आ गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो जो जमीन अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की है, उस जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने उसके लिए खुराक का इंतजाम कर दिया। यानी उस वक्त जब, अभी हम कहाँ होंगे उस वक्त, जब अल्लाह ताला ये बना रहा था हम कहाँ थे, तो पता ही नहीं, कहीं थे ही नहीं। उस वक्त अल्लाह ताला ने कयामत तक जिस जिसने आना है, जितनी मखलूक, सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, जितनी मखलूक अल्लाह पैदा करने वाला था, हर एक की डिमांड, हर एक की जरूरत, हर एक के टेस्ट के मुताबिक उसकी खुराक का पूरा सामान हिसाब लिखा के, कद्दरा फीहा, कद्दरा लफ्ज देखें यहाँ पे, नोट करें इसको, अंदाजे के मुताबिक, मुकर्रर अंदाजे के मुताबिक अल्लाह ताला ने, यानी हिसाब किताब के साथ जमीन में रख दिया। अब खुद सोचते नहीं है, लाखों सालों से इसी जमीन पे इंसान रह रहा ना, तो हमारा फूड कहां से आ रहा है, कहीं स्पेस से तो उतरता नहीं है, इसी से खा रहे हैं ना आप, तो फिर इसी ने तो रखा होगा, अंदर तो इसके अलावा है, किसने रखा हुआ है। मट्टी को आप खोदें, खोद के देखें अंदर कुछ निकलता है, कहीं पड़े हुए स्टोरेज, कहीं खजाने, कहीं कुछ, कुछ भी नहीं, तो किसने रखा ये, किसने ये सलाहियत दी इसके अंदर, किसने हिसाब लगा के रखा के, इसका मतलब है जिसने ये इंतजाम किया उसको ये पता है ना कि इसको मैंने कब तक के लिए बनाना है, कितने अरसे तक के लिए। देखिए आप प्लानिंग करते हैं ना, तो आप कैसे प्लान करते हैं, इतने दिन का राशन, इतने दिन के लिए, इतने, तो अल्लाह ताला को इसका मतलब उसने कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है ना कि तब तक ये दुनिया कायम रहेगी, उसके मुताबिक उसने हिसाब के साथ इसने सबकी खुराक रख दी। मसलन आपने सारी जिंदगी जो कुछ खाना है कितना फल खाना है, कितनी सब्जी खानी है, कितना गोश्त खाना है, कितना पानी पीना है, कितनी हवा अंदर लेने, सब हिसाब किताब करके जमीन में रख दिया गया। अच्छा आप एक एग्जांपल से, कोई कंपैरिजन तो नहीं है, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, जस्ट आपको एक, ताकि आपका जहन एक चीज से समझे इस बात को। हम अपने घरों में ग्रोसरी लेकर आते हैं, एक हफ्ते की आप ग्रोसरी करते हैं, फिर क्या होता है, कभी तो आप ज्यादा ले आते हैं कि वो चीजें सड़ गल के जाती हैं, गार्बेज होती हैं, कभी कोई चीज भूल आते हैं, कभी कोई चीज कम हो जाती है, हफ्ता खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है, फिर आप दोबारा लेने चले जाते हैं। जितनी मर्जी हम लिस्टें बना लें, प्लानिंग कर लें, कुछ ना कुछ कमी बेशी हर हफ्ते ही रह जाती। ये हमारी सिर्फ एक हफ्ते की ग्रोसरी का हाल है ना। इवन ये चलो एक हफ्ते को छोड़ो, एक दिन का ही आप खाना पकाती है ना। अब आपने खाना बनाया, किसी दिन तो ये हाल होता है कि बच जाता है, फ्रिज में पड़ा पड़ा भी 4 दिन बाद फेंकती, और कभी हाल ये होता है कि वो उसी वक्त ही खत्म हो जाता है, फिर और भी कोई पूछ रहा होता है कि कुछ है और, हालांकि घर के अफराद वही हैं, रोज हम खाना पकाते हैं, फिर भी हमारे ये अंदाजे। रब के अंदाजे देखो, इतने लाखों साल से ये जमीन, इस पे मखलूक रह रही है, कितनी मखलूक है, सिर्फ इंसान नहीं है ना, आप तमाम स्पीशीज को देखें, कितने स्पीशीज है, कितनी तरह के हैं हैवान, और अभी तक इंसान मालूम भी नहीं कर सका, पता है कि कितने लिविंग थिंग्स की सारी स्पीशीज को जान ही नहीं सका इंसान। जितनी स्पीशीज है, सब की डिमांड, सब मांगने वालों के लिए, फरमाया ना सवाल लिसाइलीन, सब मांगने वालों के लिए उनकी तलब के मुताबिक अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, पूरा सामान रखा हुआ है, पूरी ग्रोसरी यहाँ पे मौजूद है, जितना सारी मखलूक ने खाना है कयामत तक, जब तक इसको रैप अप नहीं कर देना, सब इसमें रख दिया। आपको उतरता देखते हैं कि रोज कहीं से आ रहा हो यहाँ पे रखा जा रहा हो, नहीं ना, अल्लाह ने पहले दिन से रख दिया। तो रब का इल्म देखें, हर एक की नीड के मुताबिक जितनी मखलूक उसने पैदा करनी, हाँ सारी मखलूक उसी की है ना, वही सबको खिला रहा है, जो पैदा हो चुकी उन, वो जो खा चुके वो भी, जो आने वाली है उनके लिए भी, जो आज चल रहे हैं उनके लिए भी, कोई खुशकी में है, कोई पानी में है, कोई हवा में है, कोई एक चीज खाता है, कोई दूसरी चीज खाता है, तो सबका गिन के शुमार करके उसने रखा है। और फिर ये भी नहीं कि सबने एक ही चीज खाने, चलो वो फिर भी आसान था, सब ने ही फल खाने होता तो फिर वो तो चलो एक फल, लेकिन यहाँ पे तो किसी ने गोश्त खाना, किसी ने फल खाने, किसी ने सब्जी खानी, किसी ने कुछ और चीज खानी है, जो शेर ने खाना है वो बकरी ने नहीं खाना, सांप ने एक चीज खानी, चिड़िया ने दूसरी खानी, इंसान ने कुछ खाना है, जिन्नों ने कुछ और खाना है, सबकी जरूरियात मुख्तलिफ है ना, सबकी जरूरियात के मुताबिक उनका इंतजाम। हम तो देखें, फिर अगेन मैं कह रही हूँ वो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए, अब हमारे घर में 2-4 अफराद ही होते हैं, सब अगर अलग अलग चीज डिमांड करने लगे, किसी ने कुछ खाना, किसी ने कुछ करना, हम कर सबको डांट के चुप करा देते, मेरे से नहीं बनता इतना, हर एक की अलग डिमांडे हैं। अल्लाह के दस्तरखान पे हर एक के खाने के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक, उसकी जिस्म के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक अल्लाह ने, ताला ने जमीन में चीजें रख दी, और पूरे हिसाब के साथ, इसीलिए तो निकलता आता है ना, और ना तो इतना निकल आता है कि आज ही खत्म हो जाए, देखिए कद्दर आए ना मुकर्रर अंदाजे से, ऐसे अल्लाह ताला ने रखा है, ये नहीं होता कि आज ही सारा निकल आए, आज ही सारा निकल आता तो क्या होता, खुद सोचे, हम सारा आज कुछ जाया कर देते, ज्यादा तो जाया कर देते, कुछ खा लेते, कुछ खराब हो जाता, चलो जी अगली नस्लों के लिए कुछ भी ना बचता। अल्लाह ताला ने हर आने वालों के लिए उनका इंतजाम किया, जो अगली नस्लों ने आके खाना है वो आज नहीं निकलेगा, उस वक्त निकलेगा जब उन्होंने आना, आज वालों के लिए आज है। सुभान अल्लाह। और कद्दरा का दूसरा माना छुपा हुआ भी होता है, तकदीर भी हमारी छुपी हुई है ना हमसे, तो इसमें भी देख लें तो बड़ी गहराई है, छुपा के अंदर रख दी है चीजें, ऊपर नहीं नजर आती ना, उनकी न्यूट्रिशन नजर आती है ना, उनका उगना नजर आता है ना, किधर है, खोद के देखें किधर है चीजें, हमें तो नहीं नजर आ रही कहीं आम पड़े हों, कहीं अमरूद पड़े हों, कहीं कुछ और चीजें पड़ी हों, कहीं गंदम पड़ी हो, चावल पड़े हों, कहीं भी नहीं, छुपा के रखी है। दूसरों की जो आने वालों की है वो आज छुपी हुई है, वो आज नहीं हमें नजर आ रही, जब वो आएंगे तो फिर मिलेंगे। इसीलिए कभी मुझे समझ नहीं आती ये बात जब हम कहते हैं ना कि अगर आबादी बढ़ गई तो लोग खाएंगे कैसे, मुल्क के वसायल उतने नहीं है। हमने भी अक्सर सुना होगा ना, ये हंसी आती है इस बात पे, अल्लाह कुरान की नेमत नहीं है ना इनके पास, तो इसलिए ऐसी बातें करते हैं। क्या पहले तुम खिलाते थे? जिस रब ने आज तुम्हारे खिलाने के लिए जमीन से वसायल पैदा करने, कल वालों को ना उनके लिए ना देगा? जिसने पैदा किया उसने उनका इंतजाम भी किया। आज वालों को तुम खिलाते हो क्या, जो कल वालों का बोझ तुम्हें महसूस होने लगा? और फिर हम तो इंसानों की बातें कर रहे हैं, बाकी जो इतने जानदार यहाँ पे मौजूद है उन सब का इंतजाम किसने किया था? एक दफा एक हिकायत आती है बड़ी दिलचस्प, यह कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह मैं आज तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। वो पता है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े बादशाह थे, तो पहले दिन उन्होंने कहा कि अब मैं ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह, मैं सबको खिलाना चाहता हूँ। अच्छा फिर पहले दिन अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा चलो पानी की मखलूक की तुम आज दावत करो। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा मैं पानी की सारी मछलियों की दावत करता हूँ। तो उन्होंने जिन्नों को इंसानों को लगा दिया, वो खाना पका रहे हैं पका रहे हैं पका रहे हैं, वहां से वहां तक दस्तरखान हो गया, 6 महीने तक पका पका के थक गए। अच्छा पका पका के थक गए, तब जब उन्होंने सारा तैयार हो गया तो उन्होंने दावत दी। सबसे पहले एक बड़ी सी मछली आई, वो मछली जो आई उसने आके एक ही लुकमे में सारा खा लिया, एक लुकमे में। और फिर कहती और चाहिए? उन्होंने कहा तो मेरे तो ये नौकर 6 महीने से पका पका थक गए, तुमने एक ही लुकमे में खा लिया सारा। वो कहने लगी मेरा रब तो ऐसे 3 तैयार लुकमे रोज मुझे खिलाता है, जिसको पकाने के लिए तेरे नौकर जिन और इंसान 6 महीने लगे रहे, मेरा रब ऐसे तो 3 लुकमे मेरे मुंह में रोज डालता है, आज तेरी मेहमानी की वजह से मैं भूखी रह गई। ये सिर्फ एक इबरत के लिए बात है कि देखो वो खिलाता है पिलाता है, वो जो अपनी मखलूक को खिला पिला सकता है ना, इंसान नहीं खिला सकता। सुभान अल्लाह, इसीलिए तो उसने कहा ना रिस्क मेरे जिम्मे है, रिस्क मैंने देना है, मेरा जिम्मा है। तुम्हारा जिम्मा क्या है? तुम अपने रब की मान के चलो। तुम अपना काम अगर छोड़ दोगे तब भी मैं तो अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे फिर भी खिलाता जाऊंगा। तुम सजदा नहीं भी करते उस रब को तब भी वो रिस्क देता जाता है, सबके रिस्क का इंतजाम। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है तो फिर उसके बाद उसके 4 दिन में उसको इस तरह से सजाया है कि उसमें इतना कुछ इंतजाम किया है, कितना कुछ भरा हुआ इस जमीन में, कितना कुछ छुपा हुआ इस जमीन में। जबकि इस मट्टी में ना कोई जायका है, ना कोई रंग है, ना मीठी है, ना खट्टी है, ना कोई खुशबू है इसमें, फिर कैसे पौधे निकल आ रहे हैं और कैसी उनकी जो ये जो उनकी, सिर्फ यही नहीं कि कितनी मखलूक है और कितना कितना किसके लिए चाहिए और उस कैलकुलेशन के साथ इसमें रखा है, बल्कि कैसी कैसी चीजें इसमें उगानी है। कहीं फल निकल रहे हैं, कहीं नट्स निकल रहे हैं, कहीं फसलें निकल रही हैं, कहीं कुछ है, फिर उनकी क्या शेप्स होंगी, उनके क्या जायके होंगे, उनकी कैसी पैकिंग होगी, उनकी कैसी डिजाइनिंग होगी, सब चीजें। वरना हर एक चीज को एक ही शक्ल दे दी जाती, हर चीजों को एक ही शक्ल हो जाती, मसलन ऑरेंज की शक्ल हो जाती, सब चीजों की गोल होती सारी चीजें, नहीं कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई गोल है, कोई बड़ी। देखिए आप कितनी तरह की वैरायटी है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजें और फिर मुख्तलिफ जगह के रहने वालों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक। इसीलिए तो इसमें सारी बात आ जाती ना, सवान लिसाइलीन। अब एक लोग गर्म जगह पे रहते हैं, उनकी जरूरियात मुख्तलिफ है, उनको जो खाना पीना चाहिए वो मुख्तलिफ है। वे जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, सर्द इलाकों में रहते हैं, उनकी जरूरियात मुख्तलिफ है, उनको खुराक डिफरेंट चाहिए, तो वो चीज वहीं उगती है उनकी जरूरत के मुताबिक है। जो गर्म इलाकों वाले हैं उनकी जरूरत के मुताबिक वहां पे उगती है, क्योंकि उनकी नीड्स मुख्तलिफ है। तो सब सवालियों के सवालों का जवाब उसने रख दिया, सबकी मांगे पूरी की हैं, जितने जानदार हैं सबकी। अल्लाह हू अकबर, ऐसा रब और ऐसी शाने जिस रब की हूँ, उसको भी छोड़ के लोग फिर कहीं भटक रहे हों तो फिर उनकी अकलों के ऊपर ही मातम कर सकते हैं। सोचते नहीं है मिट्टी में ये अकल किसने रख दी है कि वो ऐसे से डिजाइनिंग वाली चीजें तैयार कर रही है, ऐसे से कलर्स वाली चीजें तैयार कर रही है। किसी फलों के बाग में जाओ तो आपको पता चले कैसी कैसी चीजें अल्लाह ने तैयार की। बादाम को देखो, पिस्ते को देखो, अखरोट को देखो, सारे ही नट्स हैं मगर मुख्तलिफ। हर जमीन, सारी जमीन है, हमें तो सारी एक जैसी लगती है, लेकिन कोई जमीन के अंदर आप खजूर उगाओ तो उगती ही नहीं है। कहते नहीं, यहां पे नहीं उग सकती, यहां पे ये चीज उगती है, हमें तो सारी मिट्टी एक जैसी लगती है। अल्लाह ताला ने हर एक में डिफरेंट वो रख दी, उस इलाके के मुताबिक, उसकी मौसमी जरूरियात के मुताबिक। बेशक आज तो हम उठा के एक फल दूसरी जगह पे ले जाते हैं, वहां पे जाके खा लेते हैं, मगर जिस जगह पे वो उगता है वाकई वो उन्हीं की जरूरियात के मुताबिक है, उनकी जिस्मानी नीड्स हैं वो। तो मुख्तलिफ मौसमों में भी कौन से मौसम में कौन सा चीज उगानी है, ये भी तो अल्लाह की प्लानिंग ही है कि किस मौसम में किस चीज को उगाना है। गर्मी में आम उगाना है तो, और तरबूज उगाना है तो सर्दी में किन्नू उगाना है। हो सकता है लोगों को वाइटामिन सी, आज वो कहते हैं वाइटामिन सी इसमें ज्यादा है, सर्दी में ज्यादा चाहिए। तो ये किसने मुकर्रर किया है? कितना उगना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस मौसम में क्या होना चाहिए, किस जमीन में कैसा उगना चाहिए, किस टेस्ट को उगना चाहिए, क्या उसमें न्यूट्रिशन रखनी है, वो भी अल्लाह का ही फैसला है। क्या न्यूट्रिशन रखनी है उसमें, क्या उसकी खुशबू होनी चाहिए, क्या उसका जायका होना चाहिए, किस चीज किस जानदार के लिए क्या चीज बनानी है। अब ये मछलियां मछलियों को खाती हैं तो, लेकिन वो मछलियां तो खत्म नहीं होती जिनको वो खा रही है। अगर अल्लाह उनको वो खत्म हो जाती तो वो बड़ी मछलियां भी मर जाती। लेकिन आप देखें चल रहा है ना निजाम, तो अल्लाह पैदा कर रहे हैं कहीं से, अगर वो उनको खा जाती हैं तो वो खत्म क्यों नहीं होती। और कभी ये हवा क्यों नहीं खत्म होती, ये भी तो अकवातहा में जहां पे पैदावार है, खुराक है इंसान के लिए, ये हवा कितनी जरूरी है। अब इंसान कहता तो है नहीं यहाँ खुराक खत्म हो जाएगी दुनिया में, अगर ज्यादा इंसान पैदा हो गए, अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो गए लोगों की खुराक खत्म हो जाएगी। अच्छा चलो खुराक का तो तुम अपना बेड़ा उठाया हुआ है। ये भी कभी किसी ने कहा है हवा खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा? पता है ना उनके ऊपर तो हमारा है ही नहीं, बस समझते हैं कि हम खुराक तो हम ही पैदा करते हैं बस। आप देख लें कई जगह पे इतना लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर दोबारा वही रिजर्वॉयर निकल आते हैं पानी के, इसी तरह तेल के, इसी तरह और मिनरल्स के। लोग नहीं नहीं पता चलता है इस, वहां से ये चीज डिस्कवर हो गई, ये माइंस का पता चला, कहां से वो निकली। अल्लाह ने उन कई खजानों को दफन किया हुआ जमीन के अंदर, अगर वो आज से 200 साल पहले निकल आते तो सब खत्म हो जाते। अल्लाह ताला ने आज के लिए उनको रखा, वो आज ही डिस्कवर हुए। हमारे यहाँ तो देखें चार मेहमान से ज्यादा 10 मेहमान आ जाए तो हमें परेशानी हो जाती है, पता नहीं अब क्या हो जाएगा, है खाना पूरा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और अल्लाह को पता है कि मेरे दस्तरखान पे कितने मेहमानों ने आना है और कितनों ने खाना है, उसने उतना पैदा करके रखा है। सुभान अल्लाह। तो ये रब की हिकमत है, उसका इल्म है, ये उसकी प्लानिंग है जो उसने चार दिनों में की। यहां से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितना एहतमाम किया है ना। आप बताए ना, देखें एहतमाम आप किसके लिए करते हैं, किसके लिए एहतमाम करते हैं, जिसे मोहब्बत होती है उसी के लिए करते हैं ना। कितना कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए किया ना, वो उगाता इतनी सारी चीजें, इतनी वैरायटियां रखने की क्या जरूरत थी। एक चीज बस कह देता कोई, एक मसलन चावल है, बस यही खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है सारी जिंदगी, वो यही उगना है, यही खाना है। मुख्तलिफ टेस्ट, मुख्तलिफ स्पाइसेस, स्पाइस तो इस्तेमाल ही इंसान करता है, कोई और मखलूक तो करती ही नहीं है स्पाइसेस को इस्तेमाल। तुम्हारे जायकों के लिए उसने क्या क्या कुछ पैदा किया, और फिर से जुबान की लज्जत ही नहीं है, उसमें कितनी तुम्हारे लिए तवानाई है, एनर्जी है। सुभान अल्लाह। तो इसमें तो आप जितना गौर करते जाए ना, और भी इसमें गौर फिक्र करें और अल्लाह को पहचाने, ये शाहकार है उसकी कुदरतों के। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम। كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.